प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संविधान के दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि दर्शन क्या है हमारे संविधान का। तो हम देखते हैं कि पहला, भारत एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। प्रस्तावना में जो प्रियम्बल है ना, जो संविधान का पहला पेज है, प्रस्तावना जिसे हम बोलते हैं, प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न घोषित करके संविधान के निर्माताओं ने भारत के अधिराज्य यानी डोमिनियन की स्थिति समाप्त करके उसे अमेरिका व फ्रांस के समान प्रबुद्ध संपन्न यानी शक्ति संपन्न गणराज्य यानी देश के रूप दिया है। इस प्रकार 26 जनवरी सन 1950 के पश्चात भारत अपनी आंतरिक व विदेशी नीति निर्धारित करने में पूर्ण स्वतंत्र है। यानी भारत अब बिल्कुल आज़ाद है 26 जनवरी 1950 के बाद कि अपने देश के अंदर की नीति और विदेश किस देश के साथ कैसी नीति रखनी है उसके मामले में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ये उसको प्रबुद्ध संपन्न बनाता है। दूसरा, प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शब्द का प्रयोग करके संविधान निर्माताओं ने भारत में जनता द्वारा निर्वाचित उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। तो लोकतंत्रात्मक का मतलब हुआ कि ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता के प्रति उत्तरदायी है। तीसरा, 1976 में भारत को पंथ निरपेक्ष घोषित करके अब तक संविधान में निहित आदर्शों को स्वीकृति प्रदान की। भारत में धर्म को पूर्ण स्वतंत्रता है और राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पंथ का मतलब होता है मजहब। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया कि राज्य का कोई मतलब नहीं है किसी भी मजहब से, सभी मजहबों को बराबर आदर दिया है इसने। चौथा, हम देखते हैं 1976 में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन यानी परिवर्तन करके भारत में समाजवाद स्थापित करने का लक्ष्य घोषित किया गया, जो वास्तव में लोकतंत्र समाजवाद है। समाजवाद क्या? सबका विकास हो, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे वो मजदूर हो। पांचवा, हम देखते हैं भारत में इंग्लैंड व जापान आदि देशों के समान राजतंत्र की स्थापना ना करके इसके स्थान पर अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि देशों के समान गणराज्यों की स्थापना की गई है। गणराज्य मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ राष्ट्र का अध्यक्ष जो होता है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, जिससे राज्य का मुखिया एक निर्वाचित प्रधान होता है। यानी जो राज्य का मुखिया होता है वो निर्वाचित होता है। दूसरा हम पॉइंट देखते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था, जैसे कि हमने 10वीं में भी पढ़ा था कि भारतीय संविधान संघात्मक शासन की स्थापना करता है। संघात्मक शासन के सभी लक्षण इसमें विद्यमान हैं। सर्वप्रथम, भारतीय संविधान लिखित है और कठोर है, यानी लिखा हुआ है और कठोर है, इसको आसानी से चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, केंद्र तथा राज्यों की शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है कि कौन से कार्य राज्य सरकार के हैं, कौन से केंद्र सरकार के हैं। तीसरा, केंद्र और राज्यों तथा राज्यों के पारस्परिक झगड़े निपटाने के लिए स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। और हम देखते हैं तीसरा है, केंद्र और राज्य या राज्यों और राज्यों के बीच में आपसी झगड़े होते हैं, तो उसको निपटाने के लिए हमने एक स्वतंत्र यानी निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की है। इस न्यायालय को संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून जो संविधान के विरुद्ध हों रद्द घोषित करने का अधिकार दिया गया है। चौथा, संसद में दो सदनों की व्यवस्था की गई है ताकि ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में संघ यानी देश कि इकाइयों का प्रतिनिधित्व मिल सके, ठीक है ना। तो ये अब एकात्मक शासन की ओर झुकाव की बात भी जरा हम कर लें। यद्यपि भारतीय संविधान को संघात्मक बनाया गया है, ये लिखित व कठोर है, इस संविधान में शक्तियों का विभाजन है तथा संविधान की व्याख्या के लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, फिर भी इसका मुख्य विशेषता यह है कि इसका झुकाव एकात्मकता की ओर है, यानी केंद्र सरकार हमारी ज़्यादा शक्तिशाली है। हमारे संविधान में ऐसे अनेक लक्षण विद्यमान हैं जो संसद द्वारा किसी नए राज्य के निर्माण करने में, किसी भी राज्य का आकार को घटाने या बढ़ाने में, राज्य को अपना संविधान ना होना कि राज्यों का अपना संविधान नहीं है, एकीकृत न्यायपालिका का होना यानी न्यायपालिका एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के फैसलों से जुड़ी हुई हैं, अखिल भारतीय सेवाओं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज तथा राज्यपालों पर केंद्र का नियंत्रण, कि हम देखते हैं कि जो केंद्र सरकार अपने राज्यपाल हर एक राज्य में नियुक्त करती है, आर्थिक क्षेत्र में केंद्र सरकार पर राज्य सरकारों की निर्भरता, कि हम देखते हैं पैसों के मामलों में केंद्र सरकार अन्य राज्य सरकारों को पैसा देती हैं, निर्भर करती हैं आदि, जिसके द्वारा उसके संघात्मक व्यवहारिक रूप को समाप्त करके एक ऐसे शासन की स्थापना की जा सकती है जिसमें केंद्र को अत्यधिक शक्ति प्राप्त हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान का झुकाव एकात्मक शासन की ओर है। अब हम देखते हैं संसदीय प्रणाली की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, कि भारत में संसदीय प्रणाली स्थापित की गई है। यहाँ यद्यपि राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति है, पर किंतु उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट रूप से होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति की भांति वह स्वयं शासन नहीं करता, बल्कि उसकी स्थिति इंग्लैंड के सम्राट के समान वैधानिक शासक की तरह है। हमारा जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का है और सारे काम हमारे देश में प्रधानमंत्री करता है, तो उसकी जो ताकत है वो इंग्लैंड के सम्राट जैसी है। यहाँ कार्यपालिका को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। हमारे देश में जो कार्यपालिका है यानी प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी हैं, अतः शासन का संपूर्ण भार भारतीय मंत्रिमंडल पर है जो अपने प्रत्येक कार्य के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, पंथ निरपेक्ष राज्य यानी सेकुलर स्टेट। संविधान भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना अनुच्छेद 25 से लेकर 28 द्वारा करता है। कुछ लोग इसका अर्थ आधार्मिक या धर्म विरोधी राज्य से लगाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ यह है कि राज्य स्वयं धर्म के संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कोई दखलंदाजी नहीं करेगा, वे उदासीन बना रहेगा। धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है, उसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, हम ऐसे स्वतंत्र पंथ निरपेक्ष राज्य के निर्माण कर रहे हैं जिसमें प्रत्येक धर्म और मत को पूरी स्वतंत्रता तथा समान आदर का भाव प्राप्त होगा। जिस प्रकार इंग्लैंड में ईसाई तथा पाकिस्तान में इस्लाम राज्य धर्म है, उस प्रकार भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है और ना ही चीन या अन्य साम्यवादी देशों के अनुसार ये धर्म विरोधी है। अब हम देखते हैं कठोर और लचीले का समन्वय, है ना, कोऑर्डिनेशन ऑफ जो फिक्स बोलते हैं स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। जिन संविधानों में संवैधानिक परिवर्तन अत्यंत कठोर होता है उन्हें कठोर संविधान कहते हैं, जहाँ पे चेंजेस मुश्किल से होते हैं उसे हम कठोर संविधान कहते हैं, और जिन संविधानों में संशोधन करने के लिए साधारण कानून बनाने की विधि अपनाई जाती है उसे हम लचीला संविधान कहते हैं। यानी जहाँ पे आसानी से चेंजेस हो जाए उसे लचीला संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि इसमें ना तो अमेरिका के समान अत्यंत कठोर है और न ही इंग्लैंड के समान अत्यंत सरल पद्धति अपनाई गई है। जैसे अमेरिका का संविधान जो है कठोर है, उसमें आसानी से चेंजेस नहीं कर जा सकते, और ना ही इंग्लैंड की तरह है कि उसमें बड़ी आराम से चेंज हो जाए। यहाँ संविधान में संशोधन संबंधी प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है यदि दोनों सदनों में ये प्रस्ताव सदस्यों के कुल संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाए, तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ये संशोधन यानी परिवर्तन प्रस्ताव पारित हो जाता है। संशोधन के लिए एक अन्य कठोर विधि भी अपनाई गई है जिसमें दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के पश्चात आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुसमर्थन यानी सपोर्ट होना भी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त संविधान की कुछ धाराओं को साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जिस प्रकार बहुमत से कानून पारित होते हैं। इस प्रकार संविधान में परिवर्तनशीलता और अपरिवर्तनशीलता का अनुपम समन्वय विद्यमान है जो भारतीय परिस्थितियों के लिए आवश्यक है। इकहरी नागरिकता की बात करते हैं हम। साधारणतः जिन देशों में संघात्मक शासन है यानी दोहरी सरकार चलती है वहाँ दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। प्रत्येक नागरिक अपना इकाई राज्य का नागरिक होता है और संघ का भी नागरिक होता है। इस प्रकार नागरिक को एक ही समय में 2 नागरिकता प्राप्त हैं। परंतु भारत में एकहरी नागरिकता की व्यवस्था यानी भारत का नागरिक जो है वो एक ही है, वो भारत का नागरिक है, ना कि दिल्ली का, ना कि बिहार का। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ नागरिक चाहे वह किसी भी इकाई मतलब राज्य में रहता हो वह भारत का नागरिक होगा। इस प्रकार की बात करते हैं। संघात्मक शासन होते हुए एकहरी नागरिकता की व्यवस्था होना भारतीय एकात्मकता का प्रतीक है। वास्तव में यहाँ एकात्मक शासन के उपयुक्त बहुत अधिक परिस्थितियाँ विद्यमान हैं। इन्हीं से बाध्य होकर भारतीय संविधान निर्माताओं को एकहरी नागरिकता की व्यवस्था करनी पड़ी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात करते हैं। वर्तमान युग और लोकतंत्र के युग में जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन में भाग लेती है, इसमें जनता को अनेक अधिकार प्राप्त होते हैं, किंतु जनता के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकारों का वर्णन मौलिक अधिकारों के रूप में संविधान में कर दिया गया है और न्यायालय उनकी रक्षा करता है। व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए जिन अधिकारों की प्राप्ति आवश्यक होती है ऐसे अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अमेरिका में अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स के आधार पर ही भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था जब शुरुआत हुई थी 1950 में, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है और इस प्रकार अब केवल 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। संविधान में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को इन मौलिक अधिकारों की रक्षा का भार सौंपा गया है। समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकार हमारे मौलिक अधिकार हैं। अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने पहली बार संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A तथा अध्याय चार ए में जोड़ा गया है। ये दस कर्तव्य हैं। अब संविधान का पालन करना, देश की विभिन्न संस्थाओं, आदर्शों और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान आदि का सम्मान करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना तथा कठिन समय में देश की सेवा में सर्वश्रेष्ठ भेंट करना, को तैयार रहना, भारत के सभी नागरिकों में भ्रातृभाव यानी भाईचारे की भावना का विकास करना, भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना आदि अनेक मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। वास्तव में इन मौलिक कर्तव्यों का केवल इतना ही है कि नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें, वैसे इनकी पूर्ति के लिए न्यायालय की सहायता नहीं ली जा सकती। तो आज के टॉपिक में हम इसको यहीं रोकते हैं। आगे का हम, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो उसको हम दो पार्ट में करेंगे। तो आज का इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।